रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा चुनाव के उम्मीदवारों के संबंध में दर्ज शिकायतों की जांच हुई पूरी। निर्वाचन आयोग ने बताया बस एक उम्मीदवारी हुई है खारिज। बीते भाद्र 23 और 24 गत्ते के जंजीर आंदोलन के दौरान हुई क्षति संबंधी जांच आयोग की समयावधि 20 दिन बढ़ाने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण कल दोपहर से छाएगी बदली। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। और नेटो प्रमुख व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ग्रीनलैंड के बारे में हुई वार्ता। डेनमार्क का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी डेनिश सरकार का कथन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने भाद्र 23 और 24 गत्ते के जंजीर आंदोलन में हुई भौतिक एवं मानवीय क्षतियों की जांच के लिए गठित जांच पूछ आयोग की समयावधि 20 दिन बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने ये निर्णय किया। ये जानकारी गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने दी। बैठक ने सिद्धार्थ राजमार्ग के बुटवल पोखरा खंड सुधार परियोजना की तैयारी के लिए एशियाई पूर्वाधार निवेश बैंक से प्राप्त होने वाले 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर अनुदान सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। साथ ही सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी गृहमंत्री अर्याल को देने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किया है। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के उम्मीदवारों के संबंध में दर्ज शिकायतों की जांच में सिर्फ एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज हुई है। बता दें कि कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के उम्मीदवार रहे रेशम चौधरी की उम्मीदवारी खारिज हुई है। प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने आने वाले निर्वाचन को भयरहित और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए विश्वसनीय सुरक्षा योजना बनाकर प्रहरी परिचालन करने का निर्देश किया है। काठमांडू के नक्साल स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय से श्रव्य दृश्य के माध्यम द्वारा आसन्न निर्वाचन के संदर्भ में अपनाए जाने वाले संवेदनशीलता तथा समसामयिक विषय पर उन्होंने प्रहरी कर्मचारियों को निर्देश किया। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक कल होगी। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाल ललितपुर में कल दोपहर 1 बजे बैठक में केन्द्रीय कार्य समिति की पदाधिकारी सदस्य एवं प्रदेश सभापति के उपस्थिति के लिए अनुरोध किया गया है। ये जानकारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय के सचिव प्रकाश शर्मा ने दी। विशेष महाधिवेशन से नए पदाधिकारी और केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार केन्द्रीय कार्यालय में बैठक होने जा रही है। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण कल दोपहर से मौसम में बदली होने की अनुमान किया गया है। ये जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी। मुख्य करके नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में मौसम में बदली होकर मध्यम वर्षा और बर्फबारी होगी, ये जानकारी विभाग ने दी। विभाग के मौसमविद डेविड ढकाल ने कहा कि कल और परसों दोपहर से पश्चिम नेपाल से बादल लगने और सुदूर पश्चिम क्षेत्र में कुछ स्थानों में हल्का बारिश होने तथा उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के कुछ स्थानों में मध्यम तक बर्फबारी होने की संभावना है। इसी तरह शनिवार कुछ सुधार होगी, फिर भी बदली का असर देश भर होगी और ठंड बढ़ेगी, यह जानकारी विभाग ने दी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संसद भवन में जेनजी आंदोलन के शहीदों का शालिक रखने के विषय पर हुए प्रगति के बारे में जानकारी ली है। आज प्रधानमंत्री कार्की ने सिंह दरबार में विभिन्न मंत्री और संबंधित निकाय के अधिकारियों को बुलाकर निर्माणाधीन संसद भवन परिसर में शहीदों का शालिक रखने के विषय पर विचार विमर्श की है। मौके पर शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल ने शालिक रखने के लिए पहचान किए गए स्थान और संभावित डिजाइन के बारे में जानकारी देते हुए सुझाव तथा निर्देशन के लिए आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। बैतरी में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं। धनगढ़ी से दारचूला की ओर जा रही ट्रैक्टर दशरथ चंद राजमार्ग अंतर्गत पाटन नगर पालिका वार्ड नंबर 8 अनार खोली में आज दुर्घटनाग्रस्त होने से महाकाली नगर पालिका वार्ड नंबर 5 गल्फई के अंदाजी 21 वर्षीय ट्रैक्टर चालक करण बुढ़ा मगर की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बैतरी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सूरज सिंह ने दी। कुलेखानी काठमांडू सड़क अंतर्गत मकवानपुर की इंद्र सरोवर गांवपालिका वार्ड नंबर 2 सिमखोला पुल के नजदीक हुए सवारी हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं दो लोग घायल हो गए हैं। मकवानपुर जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता पुष्कर बोगटी के मुताबिक सरलाही से काठमांडू की ओर आ रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से सरलाही बरहतवा नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के 17 वर्षीय रोहन मंडल की मौत हो गई है। राप्ती राजमार्ग अंतर्गत सल्यान दांग सड़क आज से सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक बंद किया गया है। सल्यान दांग के कपूरकोट हरनेटी खंड में स्तरोन्नति कार्य चल रहा है, इसलिए आज से 25 गते तक दोपहर सड़क बंद रहेगी। सड़क डिवीजन कार्यालय दांग ने 30 गते सार्वजनिक सूचना जारी करके सड़क बंद होने की जानकारी दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आज नाटो प्रमुख मार्क रूट का बड़ा बयान सामने आया है। रूट ने कहा कि दावोस में अमेरिका के साथ बातचीत का मुख्य उद्देश्य रूस और चीन को डेनमार्क के आर्कटिक इलाके में मिलिट्री या आर्थिक पहुंच हासिल करने से रोकना था। रूट का यह बयान दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के एक दिन बाद आया, जिसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को जबरदस्ती हथियाने की अपनी पिछली धमकियों को नरम करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर एक डील के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में यूक्रेन पर हुए एक इवेंट में रूट ने कहा, बहुत अच्छी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि भविष्य की बातचीत ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात पर आधारित होगी। इसमें नाटो सहयोगियों, खासकर गठबंधन के 7 आर्कटिक सदस्य भी शामिल होंगे, ताकि इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रूट ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर कहा कि रूसी और चीनी आर्कटिक से दूर रहें। एक और प्राथमिकता चीन और रूस को ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था तक पहुंच बनाने का यह सैन्य मौजूदगी स्थापित करने से रोकना होगा। पिछले हफ्ते डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत की थी। बता दें कि डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर ट्रंप के पिछले दावों ने अटलांटिक पर संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। दशकों में पहली बार यूरोप और अमेरिका के बीच गंभीर दरार पैदा हो गई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा चुनाव के उम्मीदवारों के संबंध में दर्ज शिकायतों की जांच हुई पूरी। निर्वाचन आयोग ने बताया बस एक उम्मीदवारी हुई है खारिज। बीते भाद्र 23 और 24 गते के जंजेड आंदोलन के दौरान हुई क्षति संबंधी जांच आयोग की समयावधि 20 दिन बढ़ाने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। पश्चिम वायु के प्रभाव के कारण कल दोपहर से छाएगी बदली, मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। और नेटो प्रमुख व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ग्रीनलैंड के बारे में हुई वार्ता, डेनमार्क का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, डेनिश सरकार का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।